irameshwarganiyam.org परिशिष्ट सात द प्रश्न और उत्तर कुंवारी विधवा और तलाकशुदा स्त्रियां विवाह क्या है परमेश्वर की परिभाषा के अनुसार
आरंभ से ही शास्त्र यह प्रकट करते हैं कि विवाह का निर्धारण किसी समारोह प्रतिज्ञाओं या मानवीय संस्थाओं से नहीं होता बल्कि उस क्षण से होता है जब कोई स्त्री चाहे वह कुंवारी हो या विधवा किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है यही पहला यौन संबंध वह है जिसे परमेश्वर स्वयं दो आत्माओं का एक देह में मिलन मानते हैं बाइबल लगातार यह दिखाती है कि केवल इसी यौन बंधन के माध्यम से स्त्री पुरुष से जुड़ती है और उसकी मृत्यु तक उससे बंधी रहती है इसी आधार पर जो शास्त्र से स्पष्ट है हम कुंवारियों विधवाओं और तलाकशुदा स्त्रियों के विषय में सामान्य प्रश्नों की जांच करते हैं और उन विकृतियों को उजागर करते हैं जो समाज के दबाव के कारण प्रचलित हो गई हैं यहां हमने विवाह व्यभिचार और तलाक के बारे में बाइबल वास्तव में क्या सिखाती है इस पर कुछ सबसे सामान्य प्रश्न एकत्र किए हैं हमारा उद्देश्य समय के साथ फैलाई गई और अक्सर परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रत्यक्ष विरोध में खड़ी गलत व्याख्याओं को शास्त्र के आधार पर स्पष्ट करना है सभी उत्तर बाइबल के उस दृष्टिकोण का पालन करते हैं जो पुराने और नए नियम के बीच सामंजस्य बनाए रखता है प्रश्न रहाब के बारे में क्या वह एक वेश्या थी फिर भी उसने विवाह किया और यीशु की वंशावली का हिस्सा है उन्होंने नगर के सब लोगों को तलवार की धार से पूरी तरह नाश कर दिया पुरुष और स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहां तक कि बैल भेड़ और गधे भी यहोशू 6:21 राहाब विधवा थी जब वह इसराइलियों में शामिल हुई यहोशू कभी यहूदी को किसी गैर यहूदी स्त्री से विवाह की अनुमति नहीं देता जो कुंवारी न हो जब तक कि वह धर्मांतरित होकर विधवा न हो गई हो केवल तब वह परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार किसी अन्य पुरुष से जुड़ने के लिए स्वतंत्र होती प्रश्न क्या यीशु हमारे पापों को क्षमा करने नहीं आए
हाँ लगभग सभी पाप तब क्षमा कर दिए जाते हैं जब आत्मा पश्चाताप करती है और यीशु को खोजती है जिसमें व्यभिचार भी शामिल है हालांकि एक बार क्षमा मिलने के बाद व्यक्ति को उस व्यभिचारी संबंध को छोड़ना होगा जिसमें वह है यह सभी पापों पर लागू होता है चोर को चोरी छोड़नी होगी झूठे को झूठ छोड़ना होगा अपवित्र को अपवित्रता छोड़नी होगी आदि उसी तरह व्यभिचारी व्यक्ति व्यभिचारी संबंध में नहीं रह सकता और यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि व्यभिचार का पाप अब अस्तित्व में नहीं है
जब तक स्त्री का पहला पति जीवित है उसकी आत्मा उससे जुड़ी रहती है जब वह मर जाता है उसकी आत्मा परमेश्वर के पास लौटती है सभोपदेशक 12:7 और केवल तब स्त्री की आत्मा किसी अन्य पुरुष की आत्मा से जुड़ने के लिए स्वतंत्र होती है यदि वह चाहे रोमियों 7:3 परमेश्वर पापों को पहले से क्षमा नहीं करते केवल वे जो पहले ही किए जा चुके हैं यदि कोई व्यक्ति कलीसिया में परमेश्वर से क्षमा मांगता है क्षमा प्राप्त करता है लेकिन उसी रात ऐसे व्यक्ति के साथ सोता है जो परमेश्वर के अनुसार उसका जीवन साथी नहीं है तो उसने फिर से व्यभिचार किया
प्रश्न क्या बाइबल यह नहीं कहती जो परिवर्तित होता है देखो सब बातें नई हो गई हैं क्या इसका अर्थ है कि मैं शून्य से शुरू कर सकता हूं सिर
नहीं परिवर्तित व्यक्ति के नए जीवन से संबंधित पद यह बताते हैं कि पापों की क्षमा मिलने के बाद परमेश्वर उनसे कैसे जीवन जीने की अपेक्षा करते हैं और इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके पिछले पापों के परिणाम मिटा दिए गए हैं
हाँ प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है पुरानी बातें बीत गई देखो सब बातें नई हो गई जो उन्होंने 2 पद पहले पद 15 में कहा था उसका निष्कर्ष है और वह सबके लिए मरा ताकि जो जीवित है वे अब अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा इसका परमेश्वर द्वारा स्त्री को अपने प्रेम जीवन को शून्य से शुरू करने की अनुमति देने से कुछ भी लेना देना नहीं है
जैसा कि कई सांसारिक नेता सिखाते हैं।
प्रश्न, क्या बाइबल यह नहीं कहती कि परमेश्वर अज्ञानता के समय को नज़रअंदाज करते हैं? अज्ञानता के समय प्रेरितों के काम 17:30 वाक्यांश का प्रयोग पौलुस ने ग्रीस से गुजरते समय किया, एक मूर्ति पूजक लोगों से बात करते हुए जिन्होंने कभी इसराइल के परमेश्वर बाइबल या यीशु के बारे में नहीं सुना था। इस पाठ को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी परिवर्तन से पहले इन बातों से अनजान नहीं था। इसके अलावा यह पद पश्चाताप और पापों की क्षमा से संबंधित है। वचन यह भी संकेत नहीं देता कि व्यभिचार के पाप के लिए क्षमा नहीं है। समस्या यह है कि कई लोग केवल पहले से किए गए व्यभिचार के लिए क्षमा नहीं चाहते, वे उस व्यभिचारी संबंध में बने रहना भी चाहते हैं और परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करते, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। प्रश्न, पुरुषों के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा जाता? क्या पुरुष व्यभिचार नहीं करते? हाँ, पुरुष भी व्यभिचार करते हैं और बाइबल काल में दंड दोनों के लिए समान था। हालांकि परमेश्वर इस बात को अलग ढंग से देखते हैं कि प्रत्येक के लिए व्यभिचार कैसे होता है। पुरुष की कुंवारापन और युगल के संबंध के बीच कोई संबंध नहीं है। यह स्त्री है, पुरुष नहीं, जो यह निर्धारित करती है कि संबंध व्यभिचार है या नहीं।
बाइबल के अनुसार कोई भी पुरुष, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, व्यभिचार करता है जब वह किसी ऐसी स्त्री के साथ संबंध बनाता है जो न तो कुंवारी हो और न ही विधवा। उदाहरण के लिए, यदि 25 वर्ष का कुंवारा पुरुष 23 वर्ष की ऐसी स्त्री के साथ सोता है जो कुंवारी नहीं है, तो वह पुरुष व्यभिचार करता है, क्योंकि वह स्त्री परमेश्वर के अनुसार किसी अन्य पुरुष की पत्नी है। मत्ती 5:32, रोमियो 7:3, लय व्यवस्था 20:10, व्यवस्था विवरण 22:22-24।
प्रश्न, तो क्या तलाकशुदा या अलग हुई स्त्री अपने पूर्व पति के जीवित रहते हुए विवाह नहीं कर सकती, लेकिन पुरुष को अपनी पूर्व पत्नी की मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ता?
नहीं, उसे नहीं करना पड़ता। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो पुरुष बाइबल कारणों से अपनी पत्नी से अलग होता है, देखिए मत्ती 5:32, वह कुंवारी या विधवा से विवाह कर सकता है। हालांकि वास्तविकता यह है कि आज लगभग सभी मामलों में पुरुष अपनी पत्नी से अलग होकर किसी तलाकशुदा या अलग हुई स्त्री से विवाह करता है, और तब वह व्यभिचार में है, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार उसकी नई पत्नी किसी अन्य पुरुष की है।
प्रश्न, चूंकि पुरुष कुंवारियों या विधवाओं से विवाह करते समय व्यभिचार नहीं करता, क्या इसका अर्थ है कि परमेश्वर आज बहुविवाह को स्वीकार करते हैं?
नहीं, हमारे दिनों में बहुविवाह की अनुमति नहीं है, क्योंकि यीशु के सुसमाचार और पिता की व्यवस्था के उनके अधिक कठोर अनुप्रयोग के कारण सृष्टि से दी गई व्यवस्था तोग्रामा तू नोमू ये स्थापित करती है कि स्त्री की आत्मा केवल एक पुरुष से जुड़ी होती है, लेकिन ये नहीं कहती कि पुरुष की आत्मा केवल एक स्त्री से जुड़ी होती है। यही कारण है कि पवित्र शास्त्र में व्यभिचार हमेशा स्त्री के पति के विरुद्ध पाप के रूप में वर्णित है। यही कारण है कि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि पितृ पुरुष और राजा व्यभिचारी थे, क्योंकि उनकी पत्नियां विवाह के समय कुंवारी या विधवा थीं।
लेकिन मसीहा के आने के साथ हमें व्यवस्था की आत्मा तो पनेवमा तू नोमू की पूरी समझ मिली। यीशु, जो स्वर्ग से आने वाले एकमात्र प्रवक्ता हैं, यूहन्ना 3:13, यूहन्ना 12:48-50, मत्ती 17:5 ने सिखाया कि परमेश्वर भी सभी आज्ञाएं प्रेम और उसकी सृष्टि की भलाई पर आधारित हैं। व्यवस्था का अक्षर उसका रूप है, व्यवस्था की आत्मा उसका सार है।
व्यभिचार के मामले में यद्यपि व्यवस्था का अक्षर पुरुष को एक से अधिक स्त्रियों के साथ होने से नहीं रोकता, बशर्ते वे कुंवारी या विधवा हों, व्यवस्था की आत्मा ऐसी प्रथा की अनुमति नहीं देती। क्यों? क्योंकि आज यह सभी संबंधित लोगों के लिए कष्ट और भ्रम का कारण बनेगी, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना दूसरा सबसे बड़ा आदेश है,
लैव्य व्यवस्था 19:18, मत्ती 22:39। बाइबल काल में यह सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य और अपेक्षित था। हमारे दिनों में यह हर दृष्टिकोण से अस्वीकार्य है।
प्रश्न, और यदि अलग हो चुका युगल मेल मिलाप कर विवाह को पुनर्स्थापित करना चाहे तो क्या यह ठीक है?
हाँ, युगल मेल मिलाप कर सकते हैं, बशर्ते कि पति वास्तव में पत्नी का पहला पुरुष हो, अन्यथा अलगाव से पहले भी विवाह मान्य नहीं था। अलगाव की अवधि के दौरान स्त्री ने किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध न बनाया हो। व्यवस्था विवरण 24:1-4, यरमाया 3:1।
ये उत्तर इस बात को सुदृढ़ करते हैं कि विवाह और व्यभिचार पर बाइबल की शिक्षा आरंभ से अंत तक एक समान और संगत है। जो कुछ परमेश्वर ने निर्धारित किया है उसका निष्ठापूर्वक पालन करके हम शिक्षाओं के विकृत होने से बचते हैं और उनके द्वारा स्थापित संबंध की पवित्रता को सुरक्षित रखते हैं।
यह श्रृंखला और परमेश्वर की व्यवस्था पर अन्य कई अध्ययन पाए जा सकते हैं इस साइट पर, परमेश्वर का नियम .org।